ओम शांति. देयर इज अ स्लाइट चेंज. जो टॉपिक था वो कल होगा. अभी हमारे बीच मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर सविता दीदी जी हैं. सो एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करेंगे. ब्रीफ अबाउट डॉक्टर सविता दीदी जी, जो कि आज हमारे मध्य आए हैं. स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ द सोल, है ना, जो आत्मा में शक्तियां हैं, उन शक्तियों के ऊपर ये हमें एनलाइटन करेंगे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. तो अ ब्रीफ अबाउट दीदी जी. दीदी जी की जो स्पिरिचुअल जर्नी है ब्रह्मा कुमारी की, वो 1975 से दीदी जी को यह ज्ञान मिला था. आपने इस आध्यात्मिक जीवन शैली को 1988 से आपने इसको अपने जीवन का में धारण किया. तत्पश्चात आपकी जो ये आध्यात्मिक यात्रा रही है ये काफी बहुत ही सुंदर रही है. दीदी जी का जन्म 1965 कोटा में हुआ था. आपने MBBS फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी 1989 में किया है आपने, और आपने कई शहरों में प्रैक्टिस किया, इंक्लूडिंग उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, इंदौर एंड माउंट आबू. सो जैसे कि मैंने बताया कि 1988 से दीदी जी इस ज्ञान को संपूर्ण रीति से अपने अंदर धारण करके चल रहे हैं. आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे जो ब्रह्मा कुमारीज में. जैसे ये सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है, ऐसे वहां 21 विंग्स हैं, तो आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं विमेन्स विंग की. आप फैकल्टी मेंबर हैं ब्रह्मा कुमारीज अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड की. आपने करीब मोर देन 100 लेक्चर्स दिए हैं इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल्स, जेल्स एक्सेट्रा. आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप यूके, यूएसए और कई देशों में गए हैं टू प्रमोट स्पिरिचुअल एंड हेल्थ अवेयरनेस. आपने कई कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है. कुछ टॉपिक्स जो जिसमें आपको माहिरता हासिल है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग, मेडिटेशन एज मेडिसिन, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, एंगर मैनेजमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज. इससे आप समझ सकते हैं कि दीदी जी काफी अनुभवी हैं. आज का जो ये विषय है, आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं जो हमें परमात्मा से वर्षे में मिलती हैं, ये अष्ट शक्तियां बहुत जरूरी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आप बहुत अच्छे से सुने और एक एक शक्ति को अपने अंदर नोट करें और अंदर से सशक्त बने, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है सेल्फ एम्पावरमेंट है, तो ये शक्तियां ही हमें अंदर से एम्पावर करती हैं. ओके, ओवर टू दीदी जी. थैंक यू.
ओम शांति. एक बार फिर से बोलेंगे मुस्कुराते हुए, ओम शांति. तो आपने राजयोग अभ्यास के सत्रों में ये तो समझा है कि राजयोग से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं. तो उनमें से एक प्राप्ति है गुणों और शक्तियों का विकास. और जैसे कह रहे थे सर कि सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए इन्हीं गुणों और शक्तियों की हमें आवश्यकता होती है, तो ये हमारा पर्सनल डेवलपमेंट है. अगर हम प्रोफेशनल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हो सकता है वो इससे थोड़ा हटकर हो, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ को सफल बनाने के लिए जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं या जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें सामना करने के लिए, उन्हें जीतने के लिए हमें जिन शक्तियों की जरूरत होती है वो शक्तियां हम समझेंगे आज. तो ऐसे तो संसार में बहुत शक्तियां हैं, ये विश्व ही शक्तियों के आधार पर संचालित होता है. तो फिजिकल पावर्स भी हैं और ह्यूमन पावर्स भी हैं. तो फिजिकल पावर्स में हम देखते हैं सोलार एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ये सब भी अनेक प्रकार की ऊर्जा या शक्तियां हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन पावर्स की बात करते हैं तो वो दो प्रकार की शक्तियां हैं, बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां। बाह्य शक्तियों में है शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, पद की शक्ति, और आंतरिक शक्तियों में है मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, नैतिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति। तो बाह्य शक्तियों का विकास, उससे भी उपलब्धियां होती हैं, क्योंकि शारीरिक क्षमता को कोई भी विकसित करता है तो वो असाधारण प्रदर्शन करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। आप फौज में हैं तो फौज में भी शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है और उसी के लिए रोज आप अभ्यास करते रहते हैं, शारीरिक रूप से अनेक ड्रिल्स करना या व्यायाम करना या दौड़ना, जो भी अपनी शारीरिक क्षमता को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की प्रैक्टिसेस जो हैं वो चलती रहती हैं। तो ये देखा जाता है कि जो अपनी शारीरिक क्षमता को विकसित करके ऐसे प्रदर्शन करते हैं वो फिर या तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम होता है, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं, 500 किलो का वजन उठा लेते हैं। एक साधारण इंसान इतना वजन नहीं उठा सकता, लेकिन उनका रोज का अभ्यास होता है तो उसके आधार पर वो ओलंपिक्स में ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि मेडल जीतते हैं। अभी जैसे कई लोग होते हैं बालों से ट्रक खींच लेते हैं या दांतों से खींच लेते हैं। अपने यहाँ भी एक ब्रह्मा कुमारी बहन है और एक भाई भी है जो बालों से ट्रक खींच लेते हैं। भाई दांतों से खींच लेते हैं, बहनों के बाल लंबे होते हैं तो बालों से वो खींच लेती हैं। ऐसे कई बार उन्होंने यहाँ पर वो प्रदर्शन किया है और उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। तो ऐसी क्षमता, ये शारीरिक क्षमता, ऐसे ही धन की शक्ति, पद की शक्ति व्यक्ति को समाज में स्थान दिलाती है, सम्मान दिलाती है। और अगर हम आंतरिक शक्तियों की बात करते हैं तो आंतरिक शक्तियों में बौद्धिक शक्ति के आधार पर ही आज वैज्ञानिकों ने इतने आविष्कार किए हैं कि हमें इतने सुख के साधन प्राप्त हुए हैं। इस सदी के जो वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग, सभी कुछ वर्ष पहले ही उनका देहांत हुआ। वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो जीवन भर व्हीलचेयर पर रहे। 2 साल की उम्र के बाद से ही उनको एक ऐसी बीमारी हो गई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कि उनका पूरा शरीर जैसे अपंग हो गया और उन्हें व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ा। लेकिन दिमाग या कहें बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी और उसकी वजह से उन्होंने वैज्ञानिक जगत में बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया और उन्हें आइंस्टाइन के समकक्ष माना जाता है। तो आज का जो भी विकास है वो सब विज्ञान, या विज्ञान भी बुद्धि बल पर आधारित है। मानसिक शक्ति या उच्च मनोबल के आधार पर व्यक्ति असंभव को भी संभव करने की ताकत रखता है। जो भी लक्ष्य है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, वो व्यक्ति हासिल कर लेता है। उसके लिए परिस्थिति होती ही नहीं है। तो ऐसे भी अनेक मिसाल हैं, हम देखते हैं इतिहास में भी, वर्तमान में भी हम देखें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बाल्यकाल कैसे साधारण परिस्थितियों में गुजरा, लेकिन अपने उच्च मनोबल के आधार पर ही आज वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उनका भी जीवन ऐसा ही था, बहुत गरीबी में बाल्यकाल बीता। पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी, मांग कर पढ़ते थे दूसरों से। और फिर उसके बाद जब पढ़ाई भी पूरी की, राजनीतिक जीवन में आए तो भी बहुत संघर्ष रहे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, चाहे वो राजनीति में आए, लेकिन अंततः वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अमेरिका के सबसे चर्चित राष्ट्रपतियों में उनका नाम शामिल है। या हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी ना, हम देखते हैं कौन से परिवेश से आती हैं और एक महिला हैं और महिला और आदिवासी होते हुए भी आज वो देश के सर्वोच्च पद पर हैं। तो ये मनोबल की शक्ति है। तो राज्योग के अभ्यास से हमारी इन आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। फिर नैतिक और चारित्रिक शक्ति है तो वो मनुष्य को महान बनाती है। हम महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो वो क्यों महात्मा कहलाए? क्योंकि उनका नैतिक बल और चारित्रिक बल बहुत ऊंचा था, उस आधार पर वो महान हुए। तो राजयोग से ये चारों ही हमारी आंतरिक शक्तियां विकसित होती हैं। कई बार कोई सोचते हैं कि क्या योग अभ्यास से हमें कुछ सिद्धियां मिलेंगी, क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ संत महात्मा ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं कि वो किसी मंत्र का जाप करेंगे और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वो उनके सामने हाजिर हो जाती है, या वो किसी को भभूत देंगे और कहेंगे आपका रोग दूर हो जाएगा या आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। तो कई बार सचमुच ऐसा हो भी जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये लेने वाले की गहरी आस्था काम करती है। कोई भभूत ठीक करती है नहीं, आस्था ठीक करती है कि इतना विश्वास है कि वो आस्था जो है वो हील करती है। लेकिन उससे उनको नाम मिलता है, धन प्राप्त होता है, प्रसिद्धि मिलती है, पर उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता है, जीवन का कल्याण नहीं होता। इसलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियों को, अल्पकाल की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। श्री स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना है कि एक सन्यासी उनके पास आए और कहने लगे कि आपके आश्रम के पास ये जो नदी बहती है इसको मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कितना समय लगा? कहा ये कोई 8-10 वर्ष का समय लगा। तो फिर चुप रहे और थोड़ी देर के बाद उनका दूध वाला आया जो नदी पार गाँव से आता था। तो उन्होंने फिर सन्यासी के सामने ही अपने दूध वाले से पूछा तुमने कितने पैसे में नदी पार की? तो उसने कहा 1 पैसे में, उस जमाने में 1 पैसा 2 पैसा चलता था। तो सन्यासी को उन्होंने कहा कि देखो जो काम मेरा दूध वाला 1 पैसे में कर सकता है उस काम को करने में आपने इतने साल लगा दिए, आपने क्यों सन्यास किया है? उसने कहा भगवत प्राप्ति के लिए। बोला यही आपने सचमुच ईश्वर की साधना की होती तो अब तक ईश्वर तक पहुंचे होते, है ना। तो इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी अल्पकाल की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम चमत्कारों को नमस्कार नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, और वो तब जब हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, व्यक्तित्व परिवर्तन होते हैं, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। तो हमारी जो भी कमियां हैं वो अंधकार के समान हैं। अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, अंधकार प्रकाश का अभाव है। अगर प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही जो भी कमियां हैं वो किन्हीं गुणों और शक्तियों का अभाव है। अगर हम उन गुणों और शक्तियों को अपना लेते हैं या विकसित कर लेते हैं तो अपने आप ही हमारी वो कमियां दूर हो जाती हैं। और यदि वर्तमान पर हम नजर डालते हैं तो जो हमारे परिवारों की, समाज की दशा है, यहाँ तक कि प्रोफेशनल फील्ड में भी क्या स्थितियां हैं जिनका हम सामना करते हैं, हम तो उसी समाज में रह रहे हैं ना, तो क्या स्थितियां हैं? घर घर में क्रोध है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर भाव है, फिर निराशा है, भय भी है। तो इन सब के कारण क्या क्या दशा है, कहते हैं घर घर में रामायण और महाभारत चलती है, क्योंकि हमारे ये जो दो शास्त्र हैं वो मनुष्य की दो कमियों पर बने हुए हैं। रामायण ईर्ष्या की कहानी है, हम सब जानते हैं रामायण महाभारत की कहानी, बचपन से हम वो पढ़ते हैं सुनते हैं। तो क्या कहानी है, राजा दशरथ ने राम को राज तिलक की घोषणा की तो केकई की दासी मंथरा उसे ईर्ष्या हुई कि क्यों राम राजा बने, मेरी रानी केकई का बेटा भरत राजा होना चाहिए। और रानी केकई को महाराज ने दो वर दिए, ये सही समय है केकई को अपने वर मांगने चाहिए। तो उसने केकई के कान भरे और जैसे ही केकई को ये बात समझ में आई उसने अपने वर मांगे और राम को वनवास हुआ और पूरी रामायण की कथा हुई। महाभारत की कहानी क्या है, भाई भाई के द्वेष की कहानी है। कौरव पांडव दोनों भाई थे लेकिन उनमें कभी प्यार नहीं था, कारण था राज्य और संपत्ति का विवाद, और उसके कारण हमेशा ही वो अलग रहे। और उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के दो शब्दों ने, क्या कहा उसने, अंधे का बेटा अंधा। तो जैसे ही दुर्योधन ने सुना उसे इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने उसी समय निश्चय कर लिया मुझे अपने अपमान का बदला लेना है, और उसने जुए का षड्यंत्र रचा और न सिर्फ पांडवों को जुआ खेलने के लिए मजबूर किया लेकिन धोखे से उनको हराया। और फिर सारी कहानी पता है कि फिर पांडवों को फिर से वनवास हुआ, अपने अपमान का उसने बदला लिया और 13 साल बाद लौट कर आए तो क्या कहा, राज्य तो क्या सुई की नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। और उसी बात को लेकर महाभारत का युद्ध हुआ और पूरे कुल का विनाश, यही है ना कहानी। तो आज हम देखते हैं कहां ईर्ष्या नहीं है, यानी घर परिवारों में एक दो को सुखी नहीं देख सकते, एक दो को सफल नहीं देख सकते, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, है ना। यहाँ तक कि भाई भाइयों में ऐसा हो जाता है, फिर द्वेष तो है ही और धन संपत्ति को लेकर ज्यादा होता है। धन संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। आज धन को तो हम शक्ति ही मानते हैं, जैसे धन ही सब कुछ है, तो धन के आगे हम संबंधों की भी परवाह नहीं करते। तो आज समाज में ये सब दृश्य हमें दिखाई देते हैं और देशों में भी झगड़ा किस बात का है, है ना, जमीन के टुकड़े का ही झगड़ा है कि इसने मेरी जमीन ले ली, उसने हमारी जमीन ले ली, जो भी है मतलब। तो इन्हीं बात को लेकर के वही महाभारत जैसी कहानियां जो हैं वो आज भी हैं। तो ऐसी कौन सी शक्तियों की कमी है जो आज समाज की ये दशा है, और इन शक्तियों का गुणों का हम विकास करेंगे तो यही सृष्टि परिवर्तन होकर सुख की सृष्टि या जिसे हम स्वर्गिक सृष्टि कहते हैं वो सृष्टि हो सकती है। तो उसमें एक शक्ति है सहन करने की शक्ति, अष्ट शक्तियां आप देख रहे थे, ये अष्ट शक्तियां हमें राजयोग से प्राप्त होती हैं, और भी है लेकिन ये मुख्य हैं, उनमें से एक है सहन करने की शक्ति। तो आज किसी की एक छोटी बात को हम सहन नहीं कर सकते, किसी ने एक कहा तो हम दो कहेंगे, दो कहा तो चार, और चार कहा तो आठ, आठ भी नहीं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे को तैसा हमारा भाव क्या होता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, फिर हम क्यों चुप रहे। और अगर हम चुप रहेंगे तो क्या होगा, मेरे को कमजोर समझ लिया जाएगा या मेरी ही गलती मान ली जाएगी, और जब मैंने गलती की नहीं तो हम क्यों चुप रहे। और फिर हम सोचते हैं ये हमारा नाजायज फायदा उठाएंगे अगर हम चुप रहेंगे। तो हम कई बार जब छोटी छोटी बातों में सहन नहीं कर पाते तो वो बड़ा रूप ले लेती हैं और कई बार विनाशकारी तक हो जाती हैं, ये स्थिति होती है। तो हम देखते हैं आए दिन समाचार पत्रों में ऐसे समाचार होते हैं कि कैसे बात छोटी सी थी और व्यक्ति हत्या तक कर देता है, ऐसे एक समाचार था कुछ समय पहले कि एक पति को अपनी पत्नी पर शक था, तो उस बात को लेकर के उनमें झगड़ा होता था। अब एक दिन पति पहले घर में आ गया, पत्नी अभी तक घर में नहीं आई, काफी देर से आई, तो पहले ही उसको शक था। अब उसी बात को लेकर के फिर उसने झगड़ना शुरू किया। बात इतनी बढ़ गई, घर में वो चाकू तो होता ही है, तो उसने वो चाकू उठाया और उसको मार दिया, और वो सचमुच मर गई। मर गई तो अब वो घबरा गया कि अभी पुलिस आएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी। तो उसने क्या किया, फिर खुद के लिए भी फंदा बनाया और खुद को भी लटका दिया। तो वो बात जो सच है भी कि नहीं, जिसका उसे पूरा पता भी नहीं, उस बात को लेकर पूरा परिवार तबाह हो गया, दो बच्चे थे उनके अनाथ हो गए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं समाज में। चलो रोज की जिंदगी में हम इतना चरम तक नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई बात सहन नहीं होती तो हम गुस्सा करते हैं, और गुस्से में हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता, और उसका असर हमारे संबंधों पर आता है। संबंधों में प्रेम खत्म। आपने किसी को भी ऐसा शब्द अपमान करने वाला कह दिया तो प्रेम तो उसी समय खत्म हो जाता है, और फिर संबंध कई बार टूट भी जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी, थोड़े समय का पागलपन है। जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, या क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है। तो हम क्यों गुस्सा करते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि गुस्सा तो मैं नहीं समझती आप में से कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। जिसको नहीं आता है वो हाथ उठा सकते हैं, कोई नहीं। तो सभी को गुस्सा तो आता है ना। तो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब हम गुस्से में आ जाते हैं? हाँ, कॉमन 70% कारण है किसी ने मेरी बात नहीं मानी, हम जैसा चाहते हैं वैसा वो नहीं कर रहे हैं, या फिर जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें नहीं मिल रहा है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है, ये साधारण व्यक्ति है, लेकिन एक ज्ञानी क्या समझता है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व विचार भावनाएं अलग अलग हैं, कोई भी दो इंसान एक जैसे हैं नहीं। हम किसी के चेहरे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। हाँ, दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, तो हर एक के विचार भी अलग अलग हैं। तो हम जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी वही सोच रहा है, उसकी सोच हमसे अलग हो सकती है। तो हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, उनका विचार क्या है। तो इसको आपसी समझ कहते हैं ना। जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो क्रोध की स्थिति ही पैदा नहीं होती। और वैसे भी जिनसे हम अपेक्षा करते हैं इनको मेरी बात माननी चाहिए, आप चाहे फैमिली में हैं, चाहे वर्क प्लेस पर हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स या आपकी फैमिली मेंबर 10 में से 9 बार आपकी बात मानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, कभी एक आधी बार ऐसा होता है जब वो समझते हैं उनका विचार ज्यादा अच्छा है या वो सही है, तो फिर कहीं हम भी गलत हो सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा ही सही हों। तो अगर कोई हमसे छोटा भी है और वो सही बात कहता है तो हमें मान लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ ईगो आ जाता है, और जब ईगो प्रॉब्लम आती है तो फिर हम किसी की सही बात को भी गुस्से से दबाने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा है काम कराना है। काम नहीं होगा अगर गुस्सा नहीं करेंगे, तो लोग काम ही नहीं करते हैं। तो गुस्सा करने से काम तो हो जाता है, बात तो सही है, आप गुस्सा करेंगे तो सामने वाले को भय होता है और वो चुपचाप काम करेगा, लेकिन परिणाम क्या होता है, उसके मन की भावनाएं हमारे लिए बदल जाती हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो जो स्नेह सम्मान है वो तो खत्म, और वो दिल से काम नहीं करेंगे, तो जैसा काम हम चाहते हैं वैसा काम नहीं होने वाला। फिर उनमें कहीं ना कहीं बदले की भावना बनी रहती है, तो वो अवसर ढूंढते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो आपके लिए समस्या जरूर पैदा करेंगे, तो भविष्य परिणाम कई बार उसके बुरे हो सकते हैं। फिर कोई मेरे से गुस्से से काम कराए तो कितना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। हमें लगता है कि काम तो करना है, लेकिन थोड़ा प्यार से तो बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छे शब्दों में तो कह सकते हैं। तो जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद करते हैं, वही व्यवहार सभी को पसंद होता है। बच्चों पर गुस्सा करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और उनको भी हम गुस्सा करके कंट्रोल करते हैं तो हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी भय होता है तो चुप हो जाएंगे, किताब उठा के पढ़ने लगेंगे। अब वो सचमुच पढ़ नहीं रहे होते, क्योंकि गुस्से में हम बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, वो हमें भी पता नहीं चलता। हाँ, ये नालायक है, ये कभी सुधरने वाला नहीं, ये बुद्धू है, जो भी मन में आया उस समय हमने वो कह दिया। तो अब बच्चे किताब तो खोल के बैठे हैं, लेकिन अब सोच क्या रहे हैं, मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि आप उनको समझाओ, है ना, उनको हमें समय देना पड़ता है, थोड़ा प्रेम से समझाना पड़ता है, वो ऐसा क्यों करें। आज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की एज है, और उसमें बच्चे हर बात के पीछे कारण जानना चाहते हैं, वो ऐसा क्यों करें। और जब उनको ये समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तो अपने आप वो करते हैं जो आप उनसे चाहते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है आज के समय में, ना, थोड़ा बहुत काम से जो टाइम मिलता है वो हमारा मीडिया में ही चला जाता है, बच्चों को देने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। उसने एक बार पूछा, हमने जवाब दिया, दूसरी बार पूछा तो हम गुस्से से ही बात करेंगे, है ना। तो फिर यहाँ पर किसे कंट्रोल करने की जरूरत है, हमें खुद को पहले कंट्रोल करने की जरूरत है कि हम धीरज रख पाए, हम उनको प्रेम से समझा पाए। और नहीं तो फिर बच्चे आपसे वही सीख रहे हैं, वो देखते हैं कि आप अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा करते हैं, अब उनको अपनी बात मनवानी है तो वो भी फिर आप पर गुस्सा करके ही अपनी बात मनवाएंगे। फिर आप सोचेंगे ये बच्चे क्या सीख रहे हैं, पर सिखाता कौन है, हमारे ही आचरण से सीख रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही बच्चे सीखते हैं। फिर कई बार कोई हमारी निंदा कर देता है, होते ही हैं, हमारे आसपास वाले हमारी कमियों को जानते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो तुरंत बोल देते हैं कि आप ऐसे करते हो, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी चार लोगों के सामने भी बोल देंगे, तो ये बहुत ही हमें बुरा लगता है, इसको सहन करना मुश्किल होता है। लेकिन एक कहावत है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो ये कहावत क्यों कही गई, क्योंकि निंदा करने वाला तो दुश्मन लगता है, वो मित्र तो नहीं लगता, लेकिन कहा गया मित्र है। क्यों मित्र है, हमारी कमियां बताता है ये, लेकिन कब रियलाइज करेंगे, जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लिया है, खुद को रियलाइज किया, क्योंकि कहने वाला जो कह रहा है वो 1% कहीं ना कहीं हमारे अंदर है जरूर, भले ही वो बड़ा चढ़ाकर कहता है, मैग्नीफाई करता है वो। हाँ, आप रोज ऑफिस जाते हैं, टाइम पर जाते हैं, अपना काम जिम्मेवारी से करते हैं, समय पर करते हैं, लेकिन कोई कारण से 2-3 दिन आपका काम ऊपर नीचे हो गया, तो जो आपका क्रिटिक होगा उसको तुरंत मौका मिलेगा, वो कहेगा आपको पता नहीं है ही लापरवाह, ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। अब आप सोचते हैं कि हमेशा तो हम ऐसा नहीं करते, ये तो ये कारण हुआ तो कुछ हमारा काम ऊपर नीचे हो गया। तो फिर अगर 1% भी वो लापरवाही हमारे अंदर है और हम उसे दूर करते हैं, तो आगे के लिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और साथ में किसी को शिकायत का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, लोग हमारे बारे में गलत बातें करते हैं, ना, वो कमी सचमुच हमारे अंदर होती नहीं है, पर ईर्ष्या के कारण या नीचा दिखाने का भाव होता है कईयों का, जैसे कहा ना, आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो फिर नीचा दिखाना है अपने बॉस के सामने या जो भी दोस्तों के सामने, तो फिर उल्टी सीधी बातें करेंगे जो सही होती नहीं। तो अगर ऐसा है तो फिर हम उस पर ध्यान ही नहीं दें, जब वो कमी है ही नहीं हमारे अंदर, तो हमें क्यों ध्यान देना है, क्यों उसे मन पर लेना है। अगर हम उसको मन पर लेते हैं तो ही हमें दुख होता है और सामने वाले के प्रति भी वैर भाव पैदा होता है। एक बार ऐसे ही मदर टेरेसा वो कोड़ियों की सेवा करती थी, उसके लिए उनका ट्रस्ट था, तो उनको थोड़ा धन की कमी पड़ रही थी, तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जानती थी, उसके पास गई वो। तो जब उन्होंने देखा है मदर टेरेसा आई है, तो वो समझ गए है ना, और लेकिन वो उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं रखते थे। तो फिर उन्होंने अपनी रीति से उनको कहना शुरू किया जो भी उनके मन में था। थोड़ा अपमानजनक था, लेकिन वो चुपचाप रही। फिर जब उन्होंने बोल के पूरा किया, तो फिर उन्होंने कहा कि सर, ये तो आपने मुझे दिया है, लेकिन आप मेरे मरीजों के लिए क्या दे रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि मैंने जो बोला, उन्होंने इसको कुछ अपने पर लिया ही नहीं, लेकिन अभी भी इनको अपने मरीजों की चिंता है, तो उन्होंने फिर उनको जो भी सहयोग चाहिए था वो दिया। तो कहने का भाव, क्योंकि वो समझ गई कि ये जो भी बोल रहे हैं ये इनकी गलत फहमी है, तो ऐसी कुछ सच्चाई है नहीं, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और कई बार हम रिएक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, और फिर पछताते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, उस वक्त काश ऐसा नहीं किया होता। तो तब कहते हैं कि हम उसे थोड़ा पोस्टपोन कर दें, अपनी बात हम कहेंगे लेकिन एक घंटे के बाद कहेंगे, चलो एक घंटा धीरज नहीं है तो 10 मिनट के बाद ही सही, हम थोड़ा समय के बाद कहेंगे। तो वो जो गैप मिलता है, उसमें दो बातें होती हैं, क्योंकि दिमाग तो चलता रहता है ना, तो ये समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं, मेरी भी गलती है, और हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। पर अगर लगता है सामने वाले की गलती है, कहना ही चाहिए, नहीं तो दोबारा वही गलती होगी, तो फिर तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है, और वही बात अब हम शांति से कहते हैं, अच्छे शब्दों में कहते हैं, तो सामने वाला अपनी गलती मानता है और समाधान होता है। लेकिन अगर हमने तुरंत गुस्से में कहा, तो गुस्सा गुस्से को जन्म देता है, और उसकी गलती भी होगी तो भी नहीं मानेंगे वो, और ही जिद करेंगे और समस्या बढ़ जाएगी। तो हम जानते हैं गुस्से से कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं ना, ऐसे ही एक उदाहरण मुझे याद आता है अब्राहम लिंकन के जीवन का, कि अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ वहां पर, और वो सिविल वॉर में उन्होंने अपने कमांडर को जो निर्देश दिए थे, तो देखा कि हम हार रहे हैं, गृह युद्ध हार रहे हैं, तो उनको लगा कि कमांडर क्या कर रहा है, क्यों हम युद्ध हार रहे हैं। तो गुस्से में आकर के उन्होंने कुछ, उस जमाने में ईमेल और ये सब तो होते नहीं थे, पत्र के माध्यम से ही सारे मैसेजेस जाते थे, तो उन्होंने उनके नाम से पत्र लिखा भेजने के लिए, तो काफी उल्टा सीधा लिख दिया उस पत्र में, और उसी समय कोई इमरजेंसी आ गई, तो पत्र टेबल पर ही रह गया और वो इमरजेंसी के लिए चले गए। तो इमरजेंसी अटेंड करके वापस टेबल पर आए, तो अब उनको न्यूज मिल चुकी थी कि अब वो युद्ध जीत रहे हैं। तो वो पत्र जो था वो तो टेबल पर था, और जब देखा कि मैंने क्या लिखा है, तो उनको लगा कि कितना अच्छा हुआ कि मैंने ये पत्र नहीं भेजा, अगर ये पत्र चला गया होता तो अनर्थ हो जाता। तो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, तो पोस्टपोन होने से ही वो परिणाम पूरी तरह से बदल गया। तो इसीलिए कहा कि तुरंत हम रिएक्ट नहीं करें, लेकिन थोड़ा अगर हम उस पर सोचते समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करने की बजाय फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, पेड़ जब फलों से लगता है तो बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन उसको मिलता क्या है, फल। तो प्रकृति में भी ये गुण है कि वो पत्थर की चोट सह करके मीठा फल दे सकती है। तो इंसान तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता कि कोई हमारे साथ बुरा करे या अपमान करे। सहन करने वाली बातें कौन सी होती हैं, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो भी हम सहन कर रहे हैं, तो फिर क्या हम फिर भी उसके साथ भला कर सकते हैं। तो हम कर सकते नहीं कर सकते, क्या कहेंगे। अपनी पर्सनल लाइफ में तो हम कर सकते हैं ना, तो हम करें, मतलब ये शक्ति हमारे अंदर है, ये चॉइस हमारी ही होती है, ये सहन शक्ति जो है। तो हम देखते हैं जितने भी महापुरुष हुए इस संसार में, उनकी यही विशेषता थी कि उन्होंने कभी भी टिट फॉर टैट जैसा व्यवहार नहीं किया। एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार यही होता है, लेकिन उन्होंने हमेशा हर मानव के प्रति दया, प्रेम, करुणा, क्षमा का व्यवहार किया। जैसे हम सुनते हैं ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया तो उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो भी उन्होंने कहा क्षमा करना, इतना कष्ट दिया जा रहा है उनको, किस तरह से मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके मन में क्षमा भाव। और यही कारण है कि आज संसार के जितने भी गिरजाघर हैं उसमें ईसा मसीह की भगवान के रूप में प्रेयर, पूजा तो नहीं होती है लेकिन प्रेयर होती है उनकी, उनको भगवान का दर्जा मिला इन महान गुणों के कारण। ऐसे ही हमारे भारत में भी बहुत महापुरुष हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, हम अनेकों मजन दयानंद सरस्वती, अनेकों विवेकानंद, इनके जीवन के अनेकों ऐसे प्रसंग हैं। अब जैसे महात्मा गांधी के जीवन का प्रसंग है, कैसे महात्मा कहलाए, वो तो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे तो जनरल डब्बे में, क्योंकि गांधी जी कोई सुविधाएं नहीं लेते थे अपने जीवन में, क्योंकि उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि जब तक मेरे भारत में कोई भी गरीब है मैं उन सुविधाओं का लाभ नहीं लूंगा जो गरीब नहीं ले सकते। तो हमेशा ही वो जनरल डब्बे में सफर करते थे। जब जनरल डब्बे में बैठते हैं तो हम समझते हैं जनरल डब्बे में कितनी भीड़ होती है और कोई भी चढ़ता है उसमें। तो एक युवक चढ़ा और वो पान चबा रहा था, और हमारे देश में तो आजादी है कहीं भी थूक लो, तो उसने थूका, और देशों में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तो उसने थूका। तो उसको ये नहीं पता था कि मेरे पास जो बैठे हैं वो महात्मा गांधी है, क्योंकि उसने गांधी जी के बारे में सुना तो था लेकिन कभी देखा नहीं था उनको। तो थूका तो वो थूक उनके पैर पर पड़ी, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उसको पहुंच दिया अपने रुमाल से। दोबारा उसने फिर थूक दिया, फिर भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने फिर पहुंच दिया। और उतने में स्टेशन आया, तो स्टेशन पे गाड़ी रुकी और गांधी जी के नारे लग रहे थे, गांधी जी की जय, उस समय महात्मा नहीं कहलाते थे वो, तो गांधी जी की जय हो। और जैसे ही वो डब्बे से उतरे उनके गले में फूल मालाएं डाली गई और सब, तब ये युवक ने देखा, उसने कहा अरे मैंने जिसके ऊपर थूका वो गांधी जी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, कितनी शर्म की बात है। और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं मुझे, तो उसको लगा कि सचमुच मैं, हमने इनके बारे में जो सुना है वो सत्य है, माना ये इतने महान व्यक्ति हैं। तो फिर उसने नारा लगाया, और सब तो गांधी जी की जय कह रहे थे, उसने कहा महात्मा गांधी की जय हो। तो क्यों महात्मा कहा, अगर वो भी एक आम इंसान जैसे, माना हमारे ऊपर कोई थूक दे तो हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से उसको बता देंगे कि थूकने का मतलब क्या होता है। तो अगर वो भी वही करते तो वो कभी उनको महात्मा कहता, गलती से भी नहीं कहता। तो उन्होंने एक आम इंसान जैसा व्यवहार नहीं किया, और इसीलिए वो उनका जो दर्जा है वो एक साधारण इंसान से ऊपर। तो राजयोग अभ्यास से हमारे अंदर ये गुण विकसित होते हैं, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, हर मानव के प्रति। केवल ये नहीं कि जो मेरे अपने हैं उनके लिए ही मुझे प्रेम है, उनके लिए ही मेरा क्षमा भाव है, नहीं, लेकिन हर इंसान, कोई भी जो ऐसी गलती करता है जो सहन करने योग्य है उसको भी हम क्षमा कर सकते हैं। तो ईश्वर से योग लगाने से ये गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं और हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी है समाने की शक्ति। ना आप देख रहे हैं समुद्र, तो समुद्र में दो हिस्से होते हैं, ऊपर में लहरें होती हैं और भीतर में समुद्र बिल्कुल शांत होता है। ऐसे ही योगी का जीवन होता है, क्योंकि हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव यानी समस्याएं रूपी लहरें आती जाती रहती हैं, जिसको हम कहते हैं सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, है ना, निंदा स्तुति, ये जीवन में स्थितियां बनती रहती हैं। और ये अति की स्थितियां हैं जो हमारे मन को विचलित कर सकती हैं। कोई सुख में और प्रशंसा में बहुत अहंकार में आ सकते हैं, और कोई दुख में, हानि में, असफलता में बहुत निराश हताश हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपना जीवन तक भी समाप्त कर देते हैं, इतने जीवन से हताश हो जाते हैं। लेकिन एक योगी का जीवन हर परिस्थिति में समान और शांत और स्थिर होता है। तो यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, क्योंकि उसे पता है हर स्थिति परिवर्तनशील है, ना सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख सदा रहने वाला है। तो गीता में भी इसको स्थिर चित्त कहा गया। तो एक योगी जो है वो सुख दुख में समान रह सकता है। फिर दूसरा आप देख रहे हैं, सागर में अनेक नदियां आती हैं और सब जल उसमें समा जाता है। तो नदियों की सारी गंदगी भी पड़ती है जल के साथ सागर में, लेकिन होता क्या है कि वो जो हल्की वस्तु पड़ती है उसे लहरें उठाकर बाहर फेंक देती हैं, और जो भारी वस्तु होती है वो सागर के तले में चली जाती है। लेकिन सागर की सतह हमेशा स्वच्छ रहती है। तो ऐसे ही योगी का जीवन होता है कि संसार में हम बहुत अच्छी बुरी बातें देखते सुनते हैं, लेकिन क्या ग्रहण करना है, जो हमारे लिए सार्थक है, जो हमारे लिए उपयोगी है। कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गई दिए थोथा दे उड़ा। यानी एक सज्जन पुरुष का स्वभाव कैसा होता है, जैसे अनाज साफ करने वाला सूप, वो क्या करता है, कचरे को फेंक देता है और क्या रखता है, अनाज। जो हमारे लिए काम की चीज है, उपयोगी है, वही वो रह जाती है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। दूसरों में भी जब हम देखें तो गुण देखें। तो अगर हम गुणों को देख करके व्यवहार में आएंगे तो उनके प्रति स्नेह सम्मान बना रहेगा, और उन्हें अपने जीवन में समाना, माना अपने साथ या उनके साथ रहना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। किसी की कमियां देखेंगे, जैसे कहा जो नेगेटिव है, जो कचरा है जिसे हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, अगर उसे हम देखेंगे तो जीवन मुश्किल हो जाता है। समाने की शक्ति का एक तीसरा स्वरूप क्या है कि मानो कोई हमारे फ्रेंड हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम है और वो हमसे बात करते हैं, उन्हें हमारी हेल्प चाहिए। सारी बात सुनाकर कहते हैं, देखो ये मेरी पर्सनल बात है, आप किसी को मत कहना। हम भी उसको विश्वास दिलाते हैं, जरूर हम नहीं कहेंगे, लेकिन होता क्या है, हमारा कोई अपना होता है उसको हम कह देते हैं, और फिर कहते हैं देखो ये इनकी पर्सनल बात है, आप मत कहना। फिर उनका भी कोई अपना होता है, सुना देते हैं और कहते हैं मत कहना किसी को, हरेक यही कहता है। और बात क्या होती है, जो नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती जाती है, और बात बदलती भी जाती है, सिर्फ फैलती नहीं है, वो बात जैसी होती है वैसी नहीं फैलती। हरेक सुनने वाला उसने क्या समझा, उसका क्या भाव, उसने उसमें मिक्स करके उसको कहा, तो कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। एक बार ऐसे ही, मतलब कहानी इसको बताने के लिए, एक पंडित थे, उन्हें शहर जाना था गांव से, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि आप इस मेरे को टिफिन दे देना, हो सकता है आने में देर हो जाएगी। ठीक है, तो वो पत्नी ने टिफिन दे दिया। रास्ते में वो भोजन करने के लिए बैठे तो पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ था, और वो पक्षी जो है उसी समय उसने बीट कर दी जब वो उन्होंने थाली लगाई। अब वो ब्राह्मण थे, उनके लिए शुद्धि का महत्व था, तो उन्होंने खाना छोड़ दिया और फिर सोचा चलो आज शहर नहीं जाते, बाद में जाएंगे। घर वापस आ गए तो पत्नी ने पूछा क्यों, आप तो शहर गए थे, इतना जल्दी कैसे वापस आ गए। तो वो बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पत्नी का स्वभाव मालूम था कि सारे गांव को पता चलेगा। तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं, थोड़ा ज्यादा ही जोर देती रही। तो फिर उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ कि मेरे खाने में पक्षी की बीत पड़ गई और फिर मेरा विचार बदल गया, लेकिन तू ये किसी को कहना मत। कहा नहीं कहूंगी। लेकिन दूसरे दिन जब वो कुएं पे पानी भरने गई, इंसान आदत से मजबूर होता है, तो वहां उसकी जो साथी बहनें औरतें जो भी थी, उनसे सारी बात सुना दी उन्होंने, पंडित जी के साथ क्या हुआ। अब सब एक जैसा नहीं सुनते हैं, कोई आधा आधा सुनते हैं। तो एक ने क्या सुना, पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया, पक्षी की बीट नहीं, क्या गिर गया, पक्षी गिर गया। फिर उसने आगे चार लोगों से बात की, तो उसमें से एक ने सुना पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर उसने आगे बात की तो एक ने सुना पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये तो चमत्कार वाली बात हो गई, पंचायत तक पहुंची। तो पंचायत ने सोचा अच्छा गांव में हमारे पंडित जी ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, देखना चाहिए कैसे पक्षी निकलते हैं। तो उनको बुलाया, उन्होंने सोचा पंचायत ने क्यों बुलाया है, मैंने ऐसा क्या किया, तो पता चला पक्षी निकाल कर दिखाना है। तो सोचने लगे ये बात आई कहां से, पक्षी निकाल के दिखाना है, कैसे पक्षी निकालना है। तो फिर दिमाग लगाया उन्होंने क्या जवाब देना है। तो जब उनको कहा गया कि पक्षी निकाल कर दिखाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं पक्षी निकाल सकता हूं, लेकिन जो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। और फिर सारे चले गए। तो कहानी का भाव क्या हुआ, बात क्या थी और क्या से क्या हो गई। और इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान ने दो कान दिए हैं, क्यों, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन निकलती नहीं है क्योंकि दोनों कानों के बीच में दिमाग है। और कान का जो शेप है ना, वो भी क्वेश्चन मार्क वाला है, तुरंत शुरू हो जाता है दिमाग कोई भी बात सुनते हुए, अच्छा ऐसा है, ऐसा क्यों है, ये वैसे ऐसे वैसे करते हैं, जो भी मतलब, तो हम वो सोचते हैं और फिर दूसरे कान से निकालने की बजाय मुंह से निकालते हैं। तो ये है समाने की शक्ति की कमी। लेकिन जब हमारे अंदर ये शक्ति है, वो गंभीरता का गुण है, तो अगर कोई भी राज की बात है किसी की और हमें नहीं कहनी चाहिए, तो हम कभी भी नहीं कहेंगे। और अगर कहना भी है, मानो आवश्यक है, तो फिर सही व्यक्ति को सही समय पर सही स्थान पर हम वो बात कहेंगे, ताकि वो संबंधों पर प्रभाव ना डाले। नहीं तो नेचुरली जिसको, जिसने विश्वास करके आपको कहा, आपने उसकी बात को इतना फैला दिया, तो उसको पता चलते ही क्या होने वाला है, उसका विश्वास टूटेगा तो संबंध बिगड़ जाएंगे, संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी। वर्षों पुरानी दोस्ती क्यों ना हो, टूट सकती है ना। तो हमारे संबंध तुरंत बिगड़ते हैं, यहाँ तक कि देशों के लिए भी देखते हैं। एक कहावत बनी है, घर का भेदी लंका ढाए, क्यों बनी, विभीषण ने राम को रावण के सारे राज खोल दिए, इसीलिए राम रावण पर विजयी हुए। हमारा देश भी हजारों सालों तक विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम हो गया, क्यों, राजाओं के पास ऐसे भेदिए थे जो दुश्मन को उनके राज बता दिए उन्होंने, और वो दुश्मन विजयी हो गया। मुस्लिम आ गए हमारे देश में, फिर क्रिश्चियन आ गए, तो क्यों हुए, क्योंकि राजाओं की फूट के कारण क्या करते थे वो, राज अपने राज दूसरे को। तो सेना में भी इस चीज का बहुत महत्व है कि हमारे देश का राज बाहर नहीं जाना चाहिए, माना दुश्मन तक हमारा राज नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो जैसे कि देश द्रोही है, ऐसा ही कहेंगे। तो ये समाने की शक्ति माना बहुत अधिक होनी चाहिए, अगर हम देश के रक्षक हैं या देश के सैनिक हैं। तो फिर तीसरी और चौथी शक्ति है परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति। दोनों शक्तियां हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं, क्योंकि हमें व्यक्ति परिस्थिति को परखना भी होता है और फिर निर्णय भी लेना होता है। तो यदि हम सही समय पे सही निर्णय लेते हैं तो हम सफल होते हैं, और नहीं तो पश्चाताप करना पड़ता है, काश उस समय ऐसे कर लेते। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, जौहरी है, उसके पास आभूषणों की परख होती है, असली सोना है, नकली सोना, 24 कैरेट, 18 कैरेट, कितना कैरेट, तो वो ज्ञान है उसके पास, विशेष ज्ञान है, और उसके आधार पर वो सफल होता है, नहीं तो व्यापार में उसको घाटा हो सकता है। ऐसे ही डॉक्टर है, उसे बीमारी का ज्ञान है, तो उस आधार पर मरीज का इलाज कर लेता है, तुरंत मरीज को देखते ही उसे समझ में आ जाता है। ऐसे ही एक जज है, उसे कानून का ज्ञान है, तो अपराधी का सारा ब्यौरा सुनते ही उसे समझ में आ जाता है कि इसको क्या सजा होनी चाहिए, इसका क्या न्याय होना चाहिए। तो परखने की शक्ति का आधार ज्ञान है। तो जिस भी क्षेत्र में हम हैं, अगर उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान हमारे पास है तो हम परख लेते हैं। और जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे में आता है तब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है और हम व्यक्ति के भाव भावनाओं को भी परख लेते हैं। जैसे शुद्ध जल में हम तले तक देख लेते हैं। तो आज का इंसान कैसा होता है, अंदर एक बाहर दूसरा। यानी जो आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं जरूरी नहीं है अंदर में वो आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं, पीठ पीछे वो कुछ और हो सकते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के प्रति जो हमारे निर्णय होने चाहिए, हम उनके प्रति सावधान रहें या उन्हें हमें कैसे संतुष्ट करना है उसे हम संतुष्ट कर पाए, है ना। तो इस तरह से हम सही निर्णय फिर ले पाते हैं व्यक्ति को परखने के बाद। और निर्णय शक्ति को तराजू से दिखाया है। तराजू के तीन भाग हैं, कांटा, डंडा और पलड़ा। सही तौल के लिए कांटा सीधा होना चाहिए, डंडा संतुलित होना चाहिए और पलड़े बराबर होने चाहिए। लेकिन जब हम उलझन में होते हैं, सोच विचार में होते हैं, टेंशन में होते हैं या कोई भय की स्थिति है मन में, तो हमारी निर्णय शक्ति बहुत कमजोर पड़ जाती है और हम दुविधा में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम योग अभ्यास करते हैं तो मन फिर से शांत हो जाता है, एकाग्र होता है, संतुलित होता है। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर से जो संबंध है उससे हमें अंतर्दृष्टि भी मिलती है और उससे हमें अपने भविष्य को स्पष्ट देखने में मदद मिलती है, तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। तो निर्णय शक्ति में हमें योग बहुत मदद करता है कि कहां भी अगर हम बहुत दुविधा या उलझन में हैं, कुछ समय हम अपने मन को योग के द्वारा शांत कर लें और फिर हम निर्णय लें। पांचवी शक्ति जो है वो सामना करने की शक्ति है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं और उनका सामना तो हमें करना ही पड़ता है। फिर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम कैसे उसका सामना करते हैं। तो अगर किसी प्रिय जन की मृत्यु हो गई तो वो मृत्यु बहुत विचलित करने वाली होती है। यानी कई लोग इतने दुखी होते हैं कि वो दिनों तक, महीनों तक या सालों तक भी सामान्य नहीं हो पाते। उनका अपना ही जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और दवाइयां खानी पड़ती हैं उनको। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है, उसे पता है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। ये तो शरीर की मृत्यु है और आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था तब तक वो हमारे साथ थी, क्योंकि हमारे ये सभी समीप के संबंध लेन देन के संबंध होते हैं और जब वो लेन देन पूरा होता है तो वो आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर जाती है और हमें पता है जो चला गया वो लौट कर आने वाला तो नहीं है। तो फिर अगर हम बहुत दुखी होते हैं उस आत्मा को भी हम दुखी करते हैं, क्योंकि वो दुख उस तक पहुंचता है और इसीलिए हम उनकी शांति की प्रार्थना करते हैं जब भी किसी की मृत्यु होती है कि आत्मा को शांति मिले। क्योंकि अगर हम रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे तो हम क्या दे रहे हैं उसको, दुख दे रहे हैं। तो अपने कर्तव्य का हम जरूर पालन करें, जो भी उसके प्रति कर्तव्य है, लेकिन जब भी उनको याद करें उनके प्रति दुआएं दें कि वो जहां भी जाए आत्मा वो सुखी रहे, वो खुश रहे, स्वस्थ रहे। जो भी हम अच्छी कामना उनके लिए कर सकते हैं वो हमें करना है। तो जरूर है कि वो हमें याद आते हैं, कोई भी इतना साल हमारे साथ रहेगा तो जरूर वो हमें याद आता है, लेकिन दुखी होने के लिए नहीं, लेकिन उनको दुआएं देना है, शुभकामनाएं देना है। तो फिर हमारा जीवन भी सामान्य रीति से चलता रहता है। फिर कई बार अनहोनी होती है जीवन में। अनहोनी माना ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब जैसे प्राकृतिक आपदा कहीं भी अचानक आ जाती है, या कोरोना आ गया, कोई पूछकर थोड़ी आया, या कहीं भी लड़ाई झगड़ा अचानक हो जाता है, मारकाट हो जाती है। जैसे आप तो सेना में हैं तो ऐसी परिस्थितियों का सामना अचानक वाली, या कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, दुर्घटना हो गई, जो भी होता है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है कि जो भी परिणाम हम सबके सामने आते उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के तो कोई परिणाम नहीं होता है। तो हम कर्म की गति को भी समझते हैं और जो हो गया उस पर ध्यान देने की बजाय अब भविष्य में क्या सावधानी रखनी है या इसका अब क्या समाधान है वो हम करते हैं। तो हर घटना के दो पहलू होते हैं, किसी में अगर कुछ बुरा होता है तो उसमें हमारा कहीं भला भी होता है। जैसे गीता में कहा गया, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। और यहाँ पर योग जब हम करते हैं तो योग से परमात्मा के साथ का हम अनुभव करते हैं जो सर्व समर्थ है। जैसे कोई भी समर्थ हमारे साथ होता है, दुनिया में भी देखो किसी को बॉडीगार्ड है मानो, है ना, जो सुरक्षा गार्ड दिए जाते हैं, फिर वो निर्भय चलता है, उसको पता है मुझे कोई भय नहीं। या बच्चे माँ बाप के साथ हैं तो निश्चिंत होते हैं कि हमारे माँ बाप जिम्मेवार हैं, तो वो अपना मस्ती में रहते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा हमारा अनादि माता पिता है और वो जब हमारे साथ हैं तो हम निश्चिंत होते हैं क्योंकि वो हमारा परम रक्षक है। जैसे गीता में भी, गीता में क्या महाभारत में ये प्रसंग आता है कि जब अभिमन्यु को युद्ध में जयद्रथ ने धोखे से मार दिया वो चक्रव्यूह में, और अर्जुन को पता चला तो उसने उसी समय गुस्से में आकर प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को जिंदा चिता में जला दूंगा। कृष्ण ने सुना तो कृष्ण ने कहा ये अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की, जयद्रथ को मारना इतना आसान थोड़ी है, और अगर सचमुच वो नहीं मरा तो ये तो चिता में जल जाएगा। तो अब रात को सब शिविर में सो रहे थे और कृष्ण जाग रहे थे। क्यों जाग रहे थे? क्योंकि वो अर्जुन के साथी थे और उनको चिंता लगी हुई थी कि कल का युद्ध कैसा हो जो अर्जुन की विजय हो और अर्जुन उसको वध कर पाए। सारी प्लानिंग कर रहे थे लेकिन देखा अर्जुन तो सो रहा है, तो उन्होंने उसको उठाया, अर्जुन तुम सो रहे हो, तुमको पता नहीं है, तुमको याद नहीं तुमने क्या प्रतिज्ञा की है? तो उसने कहा माधव मुझे याद है लेकिन मुझे ये भी पता है आप जाग रहे हो, आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, तो फिर कौन साथी है? माना ये एहसास था उसको कि मेरे साथ कौन है। तो हम कहां भी हैं भगवान का साथ हम कहीं भी अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में इंसान इंसान को हमेशा साथ नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप युद्ध भूमि पर भी हैं और भगवान को याद करेंगे तो उसकी शक्तियां हमारे साथ तुरंत जुड़ जाती हैं। वो हमारे से एक संकल्प की दूरी पर है, बस एक थॉट किया और कनेक्शन हुआ। होगा या नहीं होगा? सीख रहे हैं आप वो कनेक्शन कैसे करना है, तो बस हम कहीं भी उसको हाजिर कर सकते हैं। तो हमारी सामना करने की शक्ति यानी वो सामर्थ्य फिर हमारी बढ़ जाती है। ऐसे ही छठी शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। तो आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में, और एक राजयोगी ये समझता है कि हम सब आत्माएं हैं, हम आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं और हम सभी परम धाम निवासी हैं, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। ये ज्ञान आपने समझा राजयोग में। तो जब हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं, फिर चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो दैहिक स्तर पर हमारे अंतर हैं और इसीलिए पूरा विश्व एक परिवार है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम मानती है, तो पूरी वसुधा एक परिवार कैसे है हम सही अर्थों में उसे समझ पाते हैं। और इसीलिए दो चार छह लोगों का परिवार मेरा परिवार है, इनके लिए ही मेरी शुभ भावना है, सहयोग की भावना है नहीं, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और यदि हम किसी को सहयोग चाहिए और दे सकते हैं तो अवश्य देते हैं। और जहां सहयोग होता है वहां एक और एक दो नहीं, एक और एक 11। बड़े बड़े काम भी सहज सरल हो जाते हैं जहां, इसीलिए चित्र में दिखाया उंगली लगी तो पर्वत उठ गया। तो एक एक उंगली, तो ये तो प्रतीकात्मक है, कोई सचमुच कोई मिट्टी का पर्वत उठा के खड़ा कर दिया वो वाला वो बात नहीं है, लेकिन यादगार है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर परिवर्तन का कार्य करते हैं तो वो कोई जादू मंदिर की छड़ी घुमाकर संसार का परिवर्तन नहीं करते, लेकिन उनके साथ अनेक आत्माओं के तन मन धन का सहयोग होता है और वो सहयोग की शक्ति से इतना विशाल कार्य। नहीं तो हम कहें ये कलयुगी पर्वत उठ जाए तो ये कलयुग कितना बड़ा है, इतना बड़ा परिवर्तन कि वो परिवर्तन होके सतयुगी सृष्टि आ जाए तो असंभव लगता है, लेकिन सहयोग की शक्ति से वो संभव है। आप यहाँ पर आए हैं तो कई बार किसी को विचार भी चला होगा कि इतनी बड़ी संस्था है कैसे इसका कार्य चलता है, कैसे इसका खर्चा चलता है, तो यही कि हर एक की एक एक उंगली, जो भी सदस्य हैं, कोई तन से सहयोग करता है, कोई मन से, कोई धन से, कोई अपना समय देता है, जो जो सहयोग कर सकता है वो अपना सहयोग करते हैं और आप देख रहे हैं कितना स्मूथली सब काम होता है। घर में चार लोग आते हैं तो क्या होता है, और यहाँ तो एक ग्रुप जाता है और दूसरा तैयार है और कोई आप देखेंगे नहीं कि कोई किसी को कुछ कह रहा है। कैसा अनुभव किया? तो ये सहयोग की शक्ति है ना? तो ये हमारी आंतरिक शक्ति है ना? ये सेल्फ डिसिप्लिन जिसे हम कहेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहेंगे। फिर कई बार हम सोचते हैं हम अकेले कहीं कुछ कर लेंगे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है इतनी दुनिया में, लेकिन फर्क पड़ता है। हम हिम्मत रखते हैं तो दूसरे भी हमारी मदद को तैयार हो जाते हैं। भगवान के लिए भी कहते हैं हिम्मत मर्दा मददे खुदा, भगवान भी कब मदद करते हैं जब हम हिम्मत रखते हैं। एक कदम हिम्मत का हमारा तो हजार कदम मदद के भगवान के होते हैं। तो ऐसे ही महात्मा गांधी जी को जब आजादी का संकल्प आया, अंग्रेजों ने उनका अपमान किया अफ्रीका में, हम सब जानते हैं ट्रेन से उनको धक्का देकर बाहर कर दिया फर्स्ट क्लास के डब्बे से, तभी उन्होंने संकल्प किया कि मुझे भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना है, और फिर दृढ़ता रखी उन्होंने तो उनके साथ साथ पूरा भारत धीरे धीरे जुड़ गया और फिर भारत आजाद हुआ। तो हिम्मत रखी उन्होंने। ऐसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो जो प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेखराज, जिनको परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कहा, उन्होंने जब ये कार्य शुरू किया वो बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत और दृढ़ता रखी तो आज ये ईश्वरीय कार्य इतना विशाल रूप ले चुका है। और आने वाले समय में जो परिवर्तन इस विश्व में लाना चाहते हैं वो भी सचमुच होना ही है, क्योंकि सहयोग की शक्ति इतनी महान शक्ति है। और सातवीं और आठवीं शक्ति है विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। दोनों शक्तियां भी हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं, कभी हमें विस्तार करना होता है, कभी एकदम सार में स्थित होकर यानी समेट लेना होता है। तो इसका उदाहरण के रूप में दिखाया है कछुआ। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर एक कठोर खोल होता है और वो अपने को सुरक्षित रखता है उसमें। जब उसको खाना चलना होता है तब वो अपने अंग बाहर निकालता है और फिर वापस खोल में, तो ये उसका सुरक्षा कवच है। ऐसे ही योगी का जीवन होता है, तो हम कर्म करते हैं, कर्मेंद्रियों का आधार लेते हैं, मन बुद्धि को कुशलता पूर्वक एकाग्रता से कार्य में लगाते हैं और कार्य समाप्त हो जाता है फिर हम कर्मेंद्रियों से विड्रॉ कर सकते हैं और अपनी आत्मा में मन को स्थित कर सकते हैं। तो आत्मिक शांति, आत्मिक सुख का अनुभव होता है और यहाँ तक कि हम संसार से भी मन को पार ले जाकर परम धाम में परमात्मा की याद में स्थित करते हैं तो मन संसार से भी न्यारा हो जाता है और मन की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। और वो कैसे हैं, जैसे एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है तो नीचे पहाड़ है, नदी है, ट्रैफिक है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी ऊंचाई है कि वो सब तो नीचे ही है। तो मन की स्थिति जब ऊंची होती है तो संसार की परिस्थितियां हमारे लिए परिस्थितियां रहती ही नहीं है, तो ये हमारी सुरक्षा हो जाती। तो ये एक योगी की कला है कि वो जब चाहे शामिल हो जाए और जब चाहे न्यारा हो जाए, यानी पावर ऑफ विड्रॉल हमारे अंदर आ जाता है, तो इससे हम सुरक्षित हो जाते हैं। कहां भी ऐसी विपरीत स्थितियां, अगर हमें विड्रॉ करना है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं। और समेटने की शक्ति, आप देख रहे हैं चित्र में, यात्रा का समान है, तो हमारी जीवन भी एक यात्रा है। इस यात्रा का प्रारंभ होता है जन्म से और अंत होता है मृत्यु होती है। तो जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है, ये जीवन का सत्य है, लेकिन जीवन भर हम इसको भूले रहते हैं। कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो जब भूलते हैं तो मन मोह माया विषयों में लगा रहता है। तो तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक है जो कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, यानी दूसरे का भी मेरा कैसे हो जाए, पूरा इस कोशिश में लगे रहते हैं। आज की दुनिया में ऐसे मनुष्य अधिक हैं, इसको कहते हैं स्वार्थी। इसीलिए भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार का कारण क्या है? दूसरे का मेरा हो जाए। दूसरे प्रकार के लोग, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, आपका नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो मेरा है उस पर तो मेरा ही अधिकार है, वो हम आपको नहीं देंगे। तो मनुष्य का स्वभाव है, जिस व्यक्ति वस्तु को वो पजेस करते हैं फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो मेरापन। फिर तीसरा स्वभाव है, इसे हम आध्यात्मिक कहेंगे, कि जो सोचते हैं ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना हम दुनिया में कुछ लेकर के आए और ना ही कुछ लेकर के जाने वाले। इसलिए कहते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है। तो कितना भी मिलियनर क्यों ना हो, एक रुपया भी ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। तो फिर इसीलिए कहावत है कि कब्र में कफन में जेब नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती। तो भौतिक संपदा हम कोई साथ नहीं ले जाते, लेकिन फिर भी आत्मा अपने साथ कुछ ले जाती, जैसे लगेज है। तो बहुत आवश्यक सामान हमारा यात्रा में हमारे साथ होता है, पूरा घर नहीं उठाते हम। तो आत्मा के साथ भी क्या जाता है, क्या जाता है बता सकते हैं? हाँ, जो उसके कर्म है वो संस्कारों के रूप में जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी कि एक बार एक व्यक्ति को गलत मुकदमे में किसी ने फंसा दिया। उसने हत्या नहीं की थी, लेकिन हत्या का आरोप उसके ऊपर आ गया और उसे सजा भी हो गई गवाहों से, तो उम्र कैद हो गई। अब उसके तीन दोस्त थे, एक दोस्त था जो दिन रात उसके साथ उठता बैठता था, दूसरा जो था शहर में रहता था कभी दिनों में मिलता था, तीसरा था दूसरे शहर में रहता था जो कभी सालों में मिलता था। तो उसने जज को अपील की कि मैंने हत्या नहीं की, मेरे को क्यों सजा दी जा रही है? तो जज ने कहा देखो तुम अपने पक्ष में गवाह पेश करो तो तुम्हारी सजा बदल सकती है। तो उसने अपने दोस्तों के लिए सोचा, मेरे दोस्त मुझे जानते हैं। तो उसने सबसे पहले उसको कहा जो दिन रात उसके साथ उठता बैठता था। उसने जैसे ही सुना उसने कहा दोस्त तुम्हारी ये मदद मैं नहीं कर सकता, कोर्ट कचहरी से मुझे बहुत डर लगता है, इससे तुम मुझे दूर रखो, तुम्हें कोई धनवन चाहिए तो बता दो वो मैं मदद कर दूंगा। उसने कहा नहीं गवाही ही देनी है, गवाही नहीं दोगे तो मेरी सजा नहीं बदलेगी। तो उसको बहुत निराशा हुई क्योंकि वो माना नहीं। फिर उसने दूसरे को पूछा तो दूसरे ने कहा दोस्त मैं अदालत तक आ जाऊंगा, लेकिन वो कटघरे में खड़े होकर गवाही देने की मेरी हिम्मत नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं गवाही ही देनी है, वो भी नहीं माना। अब तीसरे से तो उसे उम्मीद ही नहीं थी क्योंकि दूर का ही कभी सालों में मिलता था, दूर का दोस्त था। उसने सोचा पूछ लेते हैं, तो उसने पूछा, तो उसने कहा दोस्त मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हारी गवाही दूंगा, और उसने उसकी गवाही दी। तो आत्मा के भी तीन दोस्त हैं। पहला दोस्त ये शरीर है, जीवन भर शरीर और आत्मा का साथ है, लेकिन अंतिम समय में सबसे पहले क्या छूट जाता है? शरीर ही छूट जाता है। फिर दूसरे दोस्त हैं हमारे मित्र संबंधी, कहाँ तक आ जाते हैं वो? शमशान घाट तक हमें विदाई देने, यानी अदालत तक हमें विदाई देने आ जाते हैं। और फिर तीसरा दोस्त कौन सा है? भगवान के दरबार में जो सच्ची गवाही देते हैं वो कौन देते हैं? वो हमारे कर्म, जो हम अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन ये जो कर्मों की भी पूंजी है, वो कौन सी पूंजी साथ में जाती है? यात्रा में हम इल्लीगल सामान नहीं ले जा सकते। अगर कुछ भी इल्लीगल पकड़ा गया तो सजा हो जाएगी या पेनल्टी होगी। और कस्टम, विदेश यात्रा में तो पूरा कस्टम अलर्ट रहता है कि कोई भी गलत सामान तो नहीं ले जा रहा। तो यहां भी गलत क्या है? आत्मा का पाप कर्म। तो पाप कर्मों की का सामान हम नहीं ले जा सकते, उसे यहीं चुप्तू करना पड़ता है, उसका हिसाब किताब यहीं खत्म करना पड़ता है, उसकी सजा, पेनल्टी माना सजा होती है ना, तो यहीं होती है। पुण्य कर्मों की पूंजी, जो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है, वही आत्मा के साथ जाती है और वही उसकी जन्म जन्म की फिर प्रलब्ध भी होती है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति इस राज को समझता है और इसीलिए सारा समय केवल हम धन कमाने में या अपने संबंधों के निर्वाह में या जो भी संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं केवल उसमें ही हम समय नहीं देते, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी हम कुछ समय निकालते हैं ताकि हम श्रेष्ठ कर्म कर सकें, जो अविनाशी कमाई है, जो आत्मा के साथ हमेशा रहने वाली है और वो वर्तमान में भी हमें सुख देती है। तो इस तरह से इन शक्तियों के द्वारा, इन गुणों के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर हमारी विजय होती है और इस स्व परिवर्तन से जीवन में सच्ची सुख शांति का हम अनुभव करते हैं और साथ साथ परमात्मा के भी विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन ये ओवरनाइट या वन डे प्रोसेस नहीं है। हम जब निरंतर योग अभ्यास करते हैं तो फिर ये शक्तियां और गुण हमारे व्यवहार का हिस्सा स्वतः ही बनने लगते हैं। ओम शांति।
दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये शक्तियां आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, जब आप इस पथ पे चलेंगे तब जाके इसका एहसास होता है कि ये कितनी पावरफुल, कितनी शक्तिशाली शक्तियां जो हमें परमात्मा से मिलती हैं। इसका जो दीदी ने बताया, जो प्रतीतात्मक चित्र भक्ति में हम करते हैं, वो किसका है? किसका है वो? आपने दुर्गा माँ को देखा है, कितने हाथ दिखाते हैं, अष्ट, यही वो अष्ट शक्तियां हैं, वो सिंबॉलिक मीनिंग है उसका, राइट? तो संसार में जो आसुरी संस्कारों वाले मनुष्य होते हैं उन्हीं को असुर कहते हैं। तो आसुरी संस्कारों को, जो दुर्गुणों को नाश करने वाली देवी माँ दुर्गा, और वो नाश किससे करती हैं? इन्हीं अष्ट शक्तियों से, राइट? तो ये आप धीरे धीरे जब आप चलेंगे, आपका कोर्स हो जाएगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। सो दीदी जी का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे से एनलाइटन किया। थैंक यू वेरी मच।